Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopijana Vallabha Girivara Dhari. Jaya Gopijana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. ram ram hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Shyama Sundar, Radha Shyama Sundar Radhe. Jai Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Jayam Vishnupad Paramhansa Parivrajaka Acharya Ashtotar Sat His Divine Grace Abhay Charanar Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Krishna Balaram Ki Jai Shri Shri Radha Shyam Sundar Ki Jai Shri Shri Gaur Nithai Ki Jai Shri Shri Radha Kund Ki Jai श्री राधा कुंडाष्टमी की जाए श्री बहुलाष्टमी की जाए निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जाए समवेत भक्त वृंद की जाए समवेत भक्त वृंद की जाए श्री श्री गुरु गौरांग की जाए ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्योऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज बहुलाष्टमी का पावन दिवस है। इसी दिवस पर सारे भौतिक और आध्यात्मिक जगत के भी सबसे पवित्र स्थान यथा राधा कुंड का आविर्भाव यहां पर इस भौम वृंदावन में हुआ था। वैसे बहुलाष्टमी और राधा कुंडाष्टमी ये दो अलग घटनाएं हैं। इन एक ही दिन पर ये दो अलग अलग घटनाएं हुई थी, परंतु क्योंकि श्री राधा कुंड का आविर्भाव इस बहुलाष्टमी के दिवस पर हुआ था, इसलिए इस उत्सव को बहुलाष्टमी भी कहते हैं। आपको पता है कि ब्रज में अनेक वन हैं। इन अनेक वनों में से द्वादश वन 12 वन प्रमुख माने जाते हैं। इनमें से 7 यमुना जी के पश्चिमी भाग में हैं और 5 पूर्व भाग में। तो पश्चिमी भाग में 7 वनों में से एक वन है बहुलावन, और इस बहुलावन क्षेत्र में भी ये राधा कुंड आता है। तो बहुला वैसे श्रीमती राधा रानी की एक सखी है, एक गोपी है जो सदैव वहां निवास करती हैं, इसलिए इस स्थान का नाम हुआ बहुलावन। परंतु बहुला के पीछे और एक भी लीला है। उस स्थान में एक गाय रहा करती थी, ये पुराणों में वर्णन है। उसका नाम था बहुला, और उसी स्थान में बहुलावन में संकर्षण कुंड है और मान सरोवर भी है। तो इस कुंड में, इस सरोवर में एक बार ये बहुला गाय जल पीने गई। जैसे जैसे वो जल पी रही थी तो एक शेर ने आके उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें अब खा जाने वाला हूं। तो गाय ने कहा कि ठीक है, खा तो लेना, लेकिन मैं घर जाना चाहती हूं, वहां पे मेरा बछड़ा है, उसे मैं दूध पिलाऊंगी और फिर यहां लौट के आऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना। तो शेर ने बात मान ली, ठीक है। तो वो जमाना वैसे था, विश्वास किया करते थे सभी लोग, और सत्य भी बोलने वाले भी लोग ऐसे थे बहुला की तरह, और विश्वास करने वाले भी थे उस शेर की तरह। तो खैर वो वापस चली गई, अपने बछड़े से कहा कि अब जी भर के दूध पी लो, क्योंकि इसके बाद मैं अब जाऊंगी और शेर मुझे खा जाएगा। तो बछड़े ने कहा कि हम ऐसे हरगिज होने नहीं देंगे, बल्कि मैं जाऊंगा वहां, तुम यहां रह जाना, मैं जाऊंगा। तो जिस घर में वो रहा करते थे दोनों, बहुला और उसके बछड़ा, वो एक ब्राह्मण का घर था। तो ब्राह्मण ने इस बातचीत को सुन ली, अरे क्या बात है, नहीं नहीं तुम दोनों यहां रहना, मैं जाऊंगा और उस शेर से कहूंगा कि वो मुझे खा ले। तो तीनों के बीच में बहस होने लगा कि कौन जाएगा उस शेर के पास। हर एक व्यक्ति कहता तीनों में से कि मैं जाऊंगा और तुम रह जाना। अंत में हुआ ये कि तीनों वहां पर पहुंच गए। तीनों पहुंचे तो शेर के सामने आए, शेर सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, तो उस समय श्री कृष्ण भी वहां पर प्रकट हुए और श्री कृष्ण की कृपा से उस शेर का हृदय बदल गया और तीनों को भी उन्होंने कोई हानि नहीं पहुंचाई। एक जगह ऐसे भी कहा जाता है कि ये शेर वास्तव में धर्मराज यमराज थे जो इनकी परीक्षा लेने आए थे। और वहां कुंड के पास में एक मंदिर है जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति है, बहुला गाय, बछड़ा और ब्राह्मण, इन सब की मूर्तियां वहां पर आज तक हैं। तो ये घटना इस तिथि पर हुई थी, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी की तिथि में, इसलिए इसे बहुलाष्टमी कहते हैं। और इसी दिवस पर राधा कुंड का आविर्भाव भी हुआ था, इसलिए हम इसे श्री राधा कुंडाष्टमी, राधा कुंडाष्टमी भी कह सकते हैं। वैसे देखिए श्री कृष्ण का आविर्भाव भी अष्टमी पर हुआ था, जन्माष्टमी। श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव भी अष्टमी में हुआ था, राधाष्टमी। और इसीलिए राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों का आविर्भाव भी अष्टमी में ही हुआ है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण का आविर्भाव बीच रात 12 बजे हुआ, उसी तरह राधा कुंड और श्याम कुंड इन दोनों का आविर्भाव भी लगभग रात्रि के 12 बजे ही हुआ। तो कृष्ण कुंड कृष्ण का कुंड है, राधा कुंड श्रीमती राधा रानी का कुंड है। वैसे ये सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, न केवल इस भौतिक सृष्टि में परंतु समस्त आध्यात्मिक जगत में भी ये सबसे पावन स्थान है। उपदेश अमृत में भी 10वें और 11वें श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी और साथ साथ अपने तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भी श्री राधा कुंड की महिमा का वर्णन करते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे इस जगत में अनेक सकाम कर्मी होते हैं, इनको कर्मी कहते हैं जो कर्म मार्ग पे चले हुए हैं। ऐसे अनेक कर्मियों में से विरला ही कोई एक ज्ञानी मिल जाएगा जो जीवन के ऊंचे उसूलों को जानता है। ऐसे अनेक ज्ञानियों में से विरला ही कोई एक भक्त मिल जाएगा जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता हो। ऐसे अनेक अनेक भक्तों में से विरला ही कोई ऐसे एक व्यक्ति मिलेगा जिसे कृष्ण प्रेम की अवस्था की प्राप्ति हुई है। ऐसे अनेक अनेक कृष्ण प्रेमियों में से सर्वश्रेष्ठ वृंदावन की गोपियां मानी जाती हैं, और समस्त वृंदावन की ब्रज की गोपियों में से सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं श्रीमती राधा रानी। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रिय हैं, ठीक उसी प्रकार उनका जो कुंड है श्री राधा कुंड, वो भी श्री कृष्ण के लिए इतना ही प्रिय है। दूसरे शब्दों में श्रीमती राधा रानी और श्री राधा कुंड में कोई अंतर नहीं है। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है और चैतन्य चरितामृत में तीन या चार बार कविराज गोस्वामी ने इस श्लोक का उल्लेख किया है, यथा राधा तथा प्रिय विष्णुः तस्य कुण्डं प्रियं तथा सर्वगोपेषु सैवैका विष्णुर् अत्यंत वल्लभा। इसका अर्थ यह है, यथा राधा प्रिया विष्णुः, विष्णु अर्थात कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ही आदि विष्णु हैं, जो जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को अति प्रिय हैं, ठीक उसी प्रकार से तस्याः कुंडम प्रियम तथा, श्रीमती राधा रानी का कुंड तस्याः कुंडम उतना ही प्रिय है श्री कृष्ण के लिए। श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं, सबसे प्रिय गोपी हैं श्री कृष्ण के, और इसलिए उनका कुंड भी श्री कृष्ण के लिए अति प्रिय है। तो राधा रानी में और राधा कुंड में वैसे कोई अंतर नहीं है। ऐसे बताया जाता है कि राधा कुंड श्रीमती राधा रानी का तरल स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, जिस प्रकार से श्याम कुंड जो कि राधा कुंड के पास में है वो श्री कृष्ण का तरल स्वरूप है। असीम कृपा करके श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों ही यहां ब्रज भूमि में इस भौम वृंदावन में विशेष करके हम सबके उद्धार के लिए, हम सबको श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम प्रदान करने के लिए इस रूप में, इस तरल रूप में प्रकट हुए हैं। आदि पुराण में बताया गया है, ये लीला तो लंबी है, इतना समय नहीं है कि सारी लीला को हम सुनाएं, लेकिन संक्षेप में बताएंगे कि एक बार श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण जब गोलोक में थे तो एक दूसरे के प्रति प्रेमाश्रु उन दोनों की आंखों से बहने लगे। तो श्रीमती राधा रानी के प्रेमाश्रुओं से श्री राधा कुंड का निर्माण हुआ और श्री कृष्ण के प्रेमाश्रुओं से श्याम कुंड की निर्मिति हुई। गोलोक वृंदावन में भी ये हैं राधा कुंड और श्याम कुंड, जिस प्रकार से यमुना जी, गोवर्धन, ये वन जितने भी वन हैं वो सब परव्योम वृंदावन में, जो आध्यात्मिक जगत में स्थित वृंदावन है, वहां पर भी विद्यमान हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसी कृपा करते हैं कि अपने धाम को ही यहां पर ले आते हैं ताकि वो सारे जो महत्वपूर्ण लीला स्थलियां हैं वो भी यहां पर प्रकट हो जाती हैं। इन लीला स्थलियों के बिना राधा कृष्ण को कोई आनंद नहीं आता है। जब श्री कृष्ण यहां प्रकट होना चाहते थे तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी से कहा था कि मैं अब प्रकट होने वाला हूं तो तुम भी प्रकट हो जाना। तो राधा रानी ने कहा था, नहीं नहीं, जब तक वहां पे गोवर्धन नहीं आएंगे, यमुना जी नहीं रहेंगे, राधा कुंड नहीं रहेंगे तो मैं नहीं आऊंगी। तो कृष्ण का ये सब पहले से प्रकट हो चुके, अब प्रकट हो जाना तुम भी। तो इसलिए इस वृंदावन में, इस ब्रजभूमि में और उस ब्रजभूमि में कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल बराबर है। परंतु फिर भी थोड़ा बहुत भेद किया जाता है हमारी समझ के लिए, क्योंकि हम इस स्थान में हैं, इसलिए इसे भौम व्रज कहते हैं और उसे परव्योम व्रज कहते हैं। व्योम मतलब आसमान, पर मतलब आध्यात्मिक, जो इस भौतिक जगत से परे है। तो आध्यात्मिक आसमान में स्थित व्रज को पर व्योम व्रज कहते हैं, परंतु दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो खैर, ये राधा कुंड श्याम कुंड दोनों यहां पर प्रकट हुए हैं ब्रज में। बहुलावन के क्षेत्र में है अवश्य, परंतु गोवर्धन के बहुत निकट होने के कारण उनको गोवर्धन के दो नेत्र बताए गए हैं। जैसा कि आपको पता है, गोवर्धन एक मोर के आकार में है, दान घाटी गर्दन है, पूंछड़ी पूंछ है, ऐसे मुखारविंद भी है। तो राधा कुंड और श्याम कुंड ये दोनों इस मोर रूप गोवर्धन रूपी मोर के दो आंखें हैं। तो यहां इनके प्राकट्य की लीला भी श्रीमद् भागवत में है और अरिष्टासुर के वध से संबंधित है। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृपा करके अपने सारार्थ दर्शनी नाम के दशम स्कंद के ऊपर जो उनकी टीका है, उसमें काफी विस्तार में इस लीला का वर्णन किया है। तो अरिष्टासुर के वध की लीला तो आप सबने अवश्य सुनी होगी। 36वें अध्याय में हम ये पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में। वैसे 35वां अध्याय जो है भागवत का, वो है युगल गीत। रास पंचाध्याय तो समाप्त हो चुके, फिर शंखचूड का वध भी हो चुका, और अब 36वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी अरिष्टासुर के वध की लीला का वर्णन करेंगे। तो 35वां युगल गीत है, क्योंकि दो दो श्लोकों की जोड़ी में युगल ऐसे श्लोक बताते, गोपियां बातचीत करती हैं आपस में। तो ये जब अध्याय समाप्त हो जाता है तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिस तरह पहले से ही कंस अनेक असुरों को भेजा करता था वृंदावन में, इस बार भी उसने एक असुर को भेजा जिसका नाम था अरिष्ट। असुर था इसलिए अरिष्टासुर, और उसने एक बैल का रूप धारण किया। ये सारे जो असुर थे, जो कंस के साथी थे, वो सब बड़े योगी भी थे, जैसे पूतना, वो भी काम रूपिणी थी, अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल सकती थी। तो ये सारे असुर जो थे, ये भी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार योग सिद्धि के द्वारा अपने रूप को बदल सकते थे। तो इस अरिष्टासुर ने एक भयंकर विशाल बैल का रूप धारण किया। उसका एक बहुत विशाल ककुत था, ककुत समझते हैं ना, पीठ, और इतना ऊंचा था उसका पीठ कि बादल समझने लगे कि ये कोई पर्वत है, इसलिए उस ककुत के इर्द गिर्द घूमने लगे, और गरजते हुए जोर से भयंकर गर्जना थी उसकी, और अपने खुरों से मिट्टी निकालते हुए वो व्रज में प्रवेश कर गया। और उसकी गर्जना सुन के सारे ब्रजवासी भय से कांपने लगे, और वहां जो भी गर्भवती गाय थी और गोपियां थीं, उनका गर्भपात हो गया उस आवाज को सुनकर। तो जब ब्रजवासी गण डरते थे तो क्या करते थे, कृष्ण के आश्रय स्वीकार करते थे। तो हे कृष्ण कह के सारे ब्रजवासी आए। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं। तो फिर वो उस बैल के सामने गए जो कि थोड़ी दूरी पे खड़ा था, जोर जोर से सांस ले रहा था। आपको पता है बैल कैसे सांस लेते हैं, गौशाला में गए होंगे तो आपने देखा होगा, भारी भारी सांस लेते हैं। और ये अरिष्टासुर तो कोई साधारण बैल नहीं था, भयंकर बहुत बड़ा बैल था, और ऐसे लग रहा था कि जब वो सांस ले रहा है तो तूफान हो रही है। तो श्री कृष्ण जाके ललकारा अरिष्टासुर को और कहा कि इतने मूर्ख हो तुम, केवल अपने मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो, ऐसे साहस कैसे कि तुमने यहां आने की जब हम यहां खड़े हैं। तो अरिष्टासुर को बहुत क्रोध आया और अपने खुरों से फिर से जमीन की खुदाई करने लगा और फिर तेजी से आगे बढ़ा। उस समय सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण बड़े आराम से खड़े थे, एक नायक की तरह। असली नायक तो श्री कृष्ण है ना, तो अपने मित्र के कंधे पे अपना हाथ रख के बस बड़े आराम से खड़े थे कि आओ तुमसे युद्ध करेंगे। तो ऐसे खड़े थे वो, तो ये दृश्य देखकर अरिष्टासुर को और भी गुस्सा आया। जब कोई युद्ध में खड़ा हो जाता है, कम से कम थोड़ी सावधानी से खड़ा हो जाता है, अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण करके खड़ा हो जाता है, युद्ध मुद्रा में खड़ा हो जाता है, लेकिन ये कोई युद्ध मुद्रा थी नहीं, बड़े आराम से खड़े थे हसमुख चेहरे से। तो अरिष्टासुर को और गुस्सा आया, तो जब आक्रमण किया तो श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर के सींगों को बड़े आसानी से पकड़ के उसे टपक दिया जमीन के ऊपर 18-20 फुट दूर। तो अरिष्टासुर का सर चकरा गया, लेकिन फिर भी कमजोर होते हुए भी वो उठा, फिर से दोबारा आक्रमण किया। इस बार श्री कृष्ण ने फिर से अरिष्टासुर के सींगों को पकड़ लिया, घुमाया और जोर से टपका के मार डाला और अरिष्टासुर के प्राण उसके शरीर से निकल गए, खून मलमूत्र आदि सब बाहर निकला उसके शरीर से। और ऊपर बादलों के पीछे से जो देवी देवता गण खड़े थे बड़े भयभीत अवस्था में कि ये इतना भयंकर असुर है अब क्या होगा, बड़े हर्षित हुए, फूलों की वृष्टि करने लगे श्री कृष्ण के ऊपर। व्रजवासियों ने खबर सुन ली कि अरिष्टासुर इस भयंकर असुर का वध श्री कृष्ण ने इतनी आसानी से कर दिया, सारे दौड़ते दौड़ते वहां पर चले आए। गोपियां श्रीमती राधा रानी के साथ भी वहां पर चली आई, परंतु राधा रानी प्रसन्न नहीं थी। तो राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा, जब श्री कृष्ण ने राधा रानी के पास आना चाहा तो राधा रानी ने कहा, नहीं नहीं दूर रहो दूर रहो, तुम अपवित्र हो क्योंकि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, गो हत्या की है। बैल गोवंश है ना, तो बैल की हत्या भी उतनी ही भयंकर मानी जाती है जितने की गाय की हत्या है, तो तुम गाय की हत्या करने वाले हो, गो हत्या करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा पापी होता है, इसलिए हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, पहले अपने आप को शुद्ध करो। मुझे क्या करना होगा? अरे ये तो एक असुर था, उसने एक बैल का रूप धारण किया और असुर को मारना जो कि सबको तंग कर रहा था, हैरान कर रहा था, इसमें तो कोई पाप नहीं है। परंतु श्रीमती राधा रानी कुछ सुनना नहीं चाहती थी, जो भी हो लेकिन था वो बैल, गोवंश की हत्या की, इसलिए तुम अभी दूषित हो गए हो, तो जाओ शुद्ध होना है तो सारे पवित्र स्थान नदियों में और स्थानों में जाओ, भ्रमण करो, उन नदियों में स्नान कर लो, फिर आ जाओ। तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं क्यों जाऊं सारे तीर्थ स्थानों में? तो घमंड हुआ श्री कृष्ण को, ठीक है मैं सारे तीर्थ स्थानों को यहां बुला लेता। तो फिर श्री कृष्ण ने सारे तीर्थ स्थानों को बुलाया, एक एक करके सब आओ। तो सारे तीर्थ स्थान तो तत्पर रहते ही हैं श्री कृष्ण की सेवा के लिए, प्रांजलि मुद्रा में हाथ रखे हुए श्री कृष्ण के पास आए। तो कृष्ण कहा, ठीक है चलो भर दो, एक यहां कुंड बना दो यहां। तो वहां पे जितने भी पवित्र स्थान से नदियां थी, कुंड थे, उन सबका जल वहां भर गया और उसका नाम हो गया कृष्ण कुंड या श्याम कुंड। और फिर श्री कृष्ण ने उस जल में स्नान किया, बाहर आए और एक दिग्विजयी के समान खड़े हुए श्रीमती राधा रानी के सामने। अब हम पूरी तरह से पवित्र हो गए, लेकिन श्रीमती राधा रानी ने कहा कि हम कैसे विश्वास करें कि ये पवित्र जल है, ये तीर्थ स्थानों का जल है, कोई भी जल हो सकता है साधारण जल। तब फिर श्री कृष्ण के इशारे पर मूर्तिमान नदियां और पावन स्थान सब प्रकट हुए हाथ जोड़ के श्रीमती राधा रानी के सामने। कोई कहने लगी, मैं स्वयं सरस्वती हूं, मैं ताम्रपर्णी हूं, मैं नर्मदा हूं, मैं कावेरी हूं, मैं शोण नदी हूं, मैं प्रयागराज हूं, और ऐसे एक एक करके जितने भी तीर्थ स्थान थे, जितने भी पवित्र नदियां और कुंड थे, वो सब मूर्तिमान रूप में प्रकट हो गए श्रीमती राधा रानी के पास। फिर श्रीमती राधा रानी ने कहा ठीक है मान लिया। फिर श्री कृष्ण चुप थोड़ी बैठने वाले थे, फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं तो शुद्ध हो गया, लेकिन अब तुम लोग शुद्ध नहीं हो, क्योंकि आपने एक असुर का पक्ष लिया, इसलिए गो हत्या के भागीदार आप होंगे, तो आपको भी शुद्ध होना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी का ठीक है हम भी ऐसा कर लेंगे। एक चेतावनी दी श्री कृष्ण, वो कैसे दूर रह सकते हैं। तो फिर श्रीमती राधा रानी ने अपने गोपियों से कहा कि ठीक है चलो हमें यहां एक कुंड बनाना है। तो जल्दी से सारे गोपियां वहां पे आ गईं। कई जगह ऐसे वर्णन है कि उन्होंने अपने कर कमलों से मिट्टी निकालना शुरू कर दिया, जहां एक स्थान में अरिष्टासुर के खुर ने थोड़ा सा खड्डा खोद दिया था, उसी स्थान में वो खुदाई करने लगे अपने हाथों से। कई ऐसे भी कहा जाता है कि अपने कंकनों से, अपने चूड़ियों से फिर वो निकालने लगे। ऐसे मिट्टी निकाल ली, बहुत विशाल एक खड्डा बन गया। तो श्री कृष्ण वहां पर आए, ठीक है अच्छा काम कर लिया, बहुत परिश्रम किया आप लोगों ने, अब ठीक है यहां मेरे कुंड का जल है, तो मेरे कुंड का जल आ जाएगा, तो फिर आपका कुंड भर जाएगा, कोई बात नहीं, उसने स्नान कर लेना। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे कुंड के जल की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे, हम सक्षम हैं करने में, हम अपने गोपियों से कहेंगे, और वो मानसी गंगा में जहां पानी वास्तव में पवित्र है, वहां उस स्थान से हम पानी लाएंगे। सारे गोपियां खड़ी हो गईं कतार में मटके ले कुंभ लेकर, तो एक एक करके सब पानी ले आने लगी। उस समय जितने भी पवित्र स्थान थे कृष्ण कुंड में, वो सारे एक स्वरूप में प्रकट हुए श्रीमती राधा रानी के सामने हाथ जोड़ के कि आप परम देवता हैं, श्री कृष्ण केवल आपके कटाक्ष मात्र के लिए बहुत आतुर रहते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी आदि ये सब आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। वे इस तरह से वो श्रीमती राधा रानी का गुणगान करने लगे और कहने लगे कि कृपा हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि क्या चाहते हो आप, क्या वरदान चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हमें आप स्वीकार कर दीजिए, हमारा जल जो है वो आपके कुंड में आ जाए। तो श्रीमती राधा रानी कृपालु हैं, तो गोपियों की ओर देखा, गोपियों ने भी कहा हां, तो उन्होंने इशारा किया ठीक है चलो आ जाओ। फिर कृष्ण कुंड या श्याम कुंड का जल जो है वो बाहर आके इस कुंड में भर आया, और इसके बाद ये कुंड का नाम हुआ राधा कुंड। तो श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने श्रीमती राधा रानी से कहा कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे कुंड में स्नान करेगा वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा और मेरे लिए अति प्रिय हो जाएगा। और श्रीमती राधा रानी ने भी प्रसन्न होकर कहा कि जो तुम्हारे कुंड में स्नान करेगा अर्थात श्याम कुंड में, वो भी पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा और वो मेरे लिए बहुत प्रिय हो जाएगा। इस प्रकार से श्याम कुंड और राधा कुंड इनका प्राकट्य करीब करीब 5000 वर्ष पूर्व यहां भौम व्रज में हुआ। वास्तव में इस दिन पर या इस महीने में क्यों हुआ, क्योंकि ये कार्तिक महीना है और कार्तिक महीने की देवी हैं श्रीमती राधा रानी, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का और एक नाम है कार्तिक देवी, या उनका और एक नाम है ऊर्जेश्वरी, क्योंकि ये ऊर्ज व्रत कहलाता है ये महीना कार्तिक। तो ऊर्ज व्रत मास की जो देवी है वो है ऊर्जेश्वरी। तो क्योंकि ये महीना ऊर्जेश्वरी देवी या कार्तिक देवी या श्रीमती राधा रानी का महीना है, इसलिए उनका कुंड भी इसी महीने में प्रकट हुआ। और ऐसे श्रीमती राधा रानी ने कृपा की है हम सब के ऊपर। रूप गोस्वामी उपदेशामृत के 11वें श्लोक में कहते हैं कि क्योंकि श्री राधा कुंड श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है और श्री कृष्ण के लिए इतना प्रिय है जितना कि स्वयं श्रीमती राधा रानी है, इसीलिए जो भी व्यक्ति राधा कुंड के जल का स्पर्श करता है और विशेष करके स्नान करता है तो उसे कृष्ण प्रेम निश्चित मिल जाएगा। तत् प्रेम एदन सकृत अपि सरह स्नातु आविष्करोति। सकृत एक बार भी यदि कोई राधा कुंड के जल में अच्छी तरह से स्नान कर ले, बड़े भक्ति भाव से, निरपराध भाव से, अपराध रहित, तो फिर शीघ्र ही कृष्ण प्रेम उसके हृदय में जागृत हो जाएगा। स्नातुम केवल स्नान करने मात्र से। तो यह है राधा कुंड की महिमा। और उसी स्थान में, उसी तात्पर्य में, उस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी स्नान करने की बात करते हैं राधा कुंड में 7 बार। 7 बार उन्होंने दोहराया है कि कैसे राधा कुंड में स्नान करने से कृष्ण प्रेम तुरंत उदित हो जाता है एक श्रद्धालु भक्त के हृदय में। प्रभुपाद जी ने ऐसे तात्पर्य में काफी विस्तार में लिखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वैसे इस राधा कुंड में केवल ऐसे भाग्यशाली भक्त ही स्नान कर सकते हैं। नारद जी, सुखदेव जी, शिव जी, सनक ऋषि जी, ये सब भी स्नान नहीं कर पाते हैं राधा कुंड में। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो भी एक पुरुष भाव रखते हैं। पुरुष भाव अर्थात मैं एक पुरुष हूं, अर्थात देह, अपने आप को इस देह से जोड़ लेते हैं कि मैं ये हूं। जो शुद्ध कृष्ण भक्त होते हैं वृंदावन के भाव में, वो ऐसे पुरुष भाव नहीं रखते हैं। इसलिए आपको या आपको तो ज्ञात ही होगा कि जब लक्ष्मी देवी यह आना चाहती थी, हालांकि वो स्त्री शरीर में हैं, फिर भी वो नहीं आ पाए। क्यों? रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी भावना ये थी कि मैं वैकुंठ की रानी हूं और वृंदावन में रानी तो एक ही है, वो है श्रीमती राधा रानी। लक्ष्मी देवी भी यहाँ की रानी नहीं है, तो वैकुंठ की महारानी होने के भाव को वो त्याग नहीं पाई, इसलिए उनको प्रवेश नहीं मिला। और वो काफी लंबे समय से तपस्या कर रही है और अभी श्री कृष्ण के वक्षस्थल में शिववत्स के रूप में विराजमान है। शिव जी को भी आना था, लेकिन शिव जी को प्रवेश करने के लिए स्त्री का शरीर धारण करना पड़ा, गोपी शरीर, फिर वो बने गोपीश्वर महादेव। ये लीलाएं आप सबने अवश्य सुनी होंगी। तो ऐसे ही राधा कुंड में स्नान करने के लिए भाव चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जब श्रील प्रभुपाद जी अनेक शिष्यों को लेकर आए थे, तो उनके जो शिष्य थे थोड़े, उनमें से वो नए भक्त थे और अच्छी तरह से सिद्धांत को नहीं जानते थे। और जैसे अन्य स्थानों में जब स्नान करते हैं तो एक क्रीडात्मक भाव से स्नान करने लगे, यहां भी राधा कुंड में हाथ पैर जो है वो फैलाने लगे, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उनको रोक दिया और कहा कि तुम लोग ऐसे अपराध करते हो श्रीमती राधा कुंड राधा रानी के प्रति, क्योंकि राधा कुंड और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। बल्कि कैसे साहस हम कर सकते हैं कि राधा कुंड को हम अपने पैर लगाएं, स्पर्श भी नहीं करें। हालांकि श्री प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कहा था और फिर उनके भक्तों को स्नान करने भी दिया था वहां, लेकिन जब भक्तों के व्यवहार को देखा तो उन्होंने तुरंत रोक दिया कि नहीं, छूना भी नहीं, केवल अपने हाथों से 3 बार पानी लेकर अपने सर पर छिड़क देना। तो ऐसे कहा उन्होंने, परंतु कारण ये था ऐसे कहने के लिए। तो जब हम जाते हैं, हमें भी ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि राधा कुंड कोई साधारण कुंड या सरोवर नहीं है जिसमें केवल हमारे मनोरंजन के लिए कोई आराम करने के लिए हम वहां स्नान कर ले। नहीं, हमारा भाव बहुत गंभीर होना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, ध्यान पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक हमें स्नान करना चाहिए। पहले तो प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, कृपा याचना करनी चाहिए कि हमारे पैर आप में हम रखने वाले हैं, बहुत बड़ा अपराध करने वाले हैं। और फिर यदि हम अंदर प्रवेश करें, केवल खड़े हो जाएं, तीन बार डुबकी लगाएं, निकल आएं। जो भक्त इस बात से भी डरते हैं, कोई बात नहीं, आप तीन बार लेके अपने सर पे लग सकते हैं, क्योंकि राधा कुंड के प्रति हमें अपराध बिल्कुल नहीं करना है। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्तों को लेकर आए थे ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए, उस समय भी भक्त लोगों ने स्नान नहीं किया था, केवल आचमन किया और थोड़े बूंद लिए, राधा कुंड से अपने सर पे छिड़क लिया, ताकि हमारे मन में राधा कुंड के प्रति वो सम्मान रहे, मर्यादा व्यतिक्रमण न हो जाए कि राधा कुंड को साधारण समझ के हम कोई बड़ा अपराध न कर बैठे जिसके द्वारा हमारी भक्ति में बहुत बड़ी रुकावटें आ सकें। तो खैर, राधा कुंड का आविर्भाव तो हुआ, लेकिन ऐसे अनेक वर्ष बीत गए और सारे तीर्थ स्थान जो भी थे ब्रज में, वो धीरे धीरे से लुप्त होने लगे। वैसे वज्रनाभ ने यहां ब्रज के लिए बहुत कुछ किया। जब महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वनवास में गए थे, जब उन्होंने जान लिया कि श्री कृष्ण का तिरुभाव हो चुका है, तो उन्होंने महाराज परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया। महाराज परीक्षित तो अभिमन्यु के पुत्र थे, अभिमन्यु का निधन तो हो गया था और सारे पांडव तो निकल पड़े थे हिमालय के लिए, इसलिए परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बिठाया। और श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र थे वज्रनाभ, उनको मथुरा का राजा बनाया। वज्रनाभ के पिता थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पिता प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पिता श्री कृष्ण। तो इस तरह से अनिरुद्ध श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे। उन्होंने ब्रज के लिए बहुत किया। अनेक जो सबसे महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं ब्रज की, मूल मूर्तियां, जिनमें से प्राय एक भी यहां रहा नहीं अभी, केवल वृंदा देवी काम्यवन में है शायद, लेकिन जितने भी मूल मूर्तियां ब्रज की हैं, उनकी स्थापना वज्रनाभ ने की थी। जैसे गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, वृंदा देवी, हरिदेव, केशव जी और गोपेश्वर महादेव, ऐसे अनेक मूर्तियों की स्थापना वज्रनाभ ने की। तो जब वज्रनाभ यहां गए थे राधा कुंड में, उन्होंने देखा कि हाँ, ये कुंड है, इनकी दशा अच्छी नहीं है, तो अच्छी तरह से बलुआ पत्थर से, जो सैंडस्टोन कहते हैं, उससे उन्होंने कृष्ण कुंड के भीतर छोटा सा कुंड था वहां उस समय, वज्र कुंड जो मूल कुंड था कृष्ण के समय, उसके इर्द गिर्द उन्होंने एक दीवार बनवाई और ऐसे पत्थरों से, बलुआ पत्थर से, ताकि लोग उस सीमा पर चल भी सकें और फिर स्नान भी कर सकें। और उनके बाद फिर अनेक लोगों ने उसकी वृद्धि कर ली, बढ़ाई, और फिर आज तो कुंड काफी बड़ा है। लेकिन जब जल कम हो जाता है बरसात, ग्रीष्म ऋतु में, तो उस समय आप फिर भी इस वज्र कुंड को देख पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से राधा कुंड में जो सबसे मूल कुंड है, उसे कंचन कुंड कहते हैं, जो गोपियों ने अपने कंकनों से खुदाई करके मिट्टी निकाली थी, तो वहां भी उन्होंने ऐसे दीवार बनाए। फिर आगे चल के आने वाले वर्षों में वो कुंड बड़ा बनाया गया और अनेक लोगों ने घाट भी अच्छी तरह से बनाए। लेकिन अनेक वर्षों तक वज्रनाभ के बाद फिर किसी को पता नहीं चला था। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की यात्रा में आए थे, तो सारे तीर्थ स्थानों में, यहाँ के लीला स्थलियों में वो गए, भ्रमण करते रहे और गोवर्धन की परिक्रमा करते करते फिर राधा कुंड, श्याम कुंड तक भी पहुंचे। वहां उस समय उस गांव का नाम अरिट ग्राम था। ये एक अपभ्रंश है, अरिष्ट से अरिट हुआ, तो अरिष्टासुर का गांव, जिस गांव में अरिष्टासुर का वध श्री कृष्ण ने किया था, उस गांव का नाम अरिट ग्राम हो गया। तो गांव के थोड़े ही बाहर एक तमाल वृक्ष के नीचे श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे थे अपना नाम संकीर्तन करते हुए, कि उन्हें साक्षात्कार हुआ कि अरे सामने यहाँ जो जल है जिसमें मिट्टी भरा हुआ है और यहाँ स्थानीय किसानों ने कुछ फसल वगैरह रखे हैं, ये वास्तव में राधा कुंड और श्याम कुंड है। बड़े भाव विभोर होकर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत उठे और यद्यपि उन दोनों कुंडों में पानी बहुत कम था और ऐसे प्रतीत नहीं हो रहा था कि ये कुंड हैं, फिर भी महाप्रभु भाव विभोर अवस्था में जाके वहां स्नान करने लगे और वहां जो पास में लोग थे, ब्रजवासी थे वहां के, वो तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये सन्यासी ऐसे क्यों कर रहे हैं। वैसे महाप्रभु जब पहुंचे थे उन्होंने काफी पूछताछ की थी, जिज्ञासा की थी लोगों से कि यहाँ श्याम कुंड और राधा कुंड कहाँ है। तो श्याम कुंड राधा कुंड के नाम से उनको पता नहीं था, लेकिन वहां की भाषा में वो कहते थे ये तो गौरी कुंड है और ये कारी कुंड है। कारो, यहाँ ब्रज भाषा में कारो कहते, जो काले हैं वो कृष्ण हैं और जो गौरी हैं वो राधा रानी हैं। तो ऐसे वो कहते थे, फिर महाप्रभु समझ पाए कि ये वास्तव में राधा कुंड और श्याम कुंड है। फिर बड़े आनंद से उन्होंने स्नान कर लिया वहां और वहां की मिट्टी ले ली, थोड़ा बहुत वापस जगन्नाथपुरी ले जाने के लिए भी उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी ले ली। उसके बाद जब वृंदावन ब्रज छोड़ के वह वापस जा रहे थे दक्षिण की ओर, तो वाराणसी पहले तो प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में रूप गोस्वामी पाद को उन्होंने 10 दिन दशाश्वमेध घाट में उपदेश किया। आगे चल के वाराणसी पहुंचे, वहां 2 महीने उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद को उपदेश दिए और फिर वो आगे चले गए। सनातन गोस्वामी को कहे कि आप और रूप दोनों मिलकर ब्रज में रहो। फिर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन और रूप गोस्वामियों को और अन्य जो गोस्वामी हैं, कुल मिलाकर 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामी, उनको उन्होंने कई आदेश दिए कि मंदिरों की स्थापना करके अर्चा विग्रह की सेवा कैसे की जाए, ये आप स्थापित करना, ये बताना सारी दुनिया को। एक वैष्णव का आचार कैसे होना चाहिए, व्यवहार कैसे होना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, एक नियमावली आदि आप बनाइए, ग्रंथ लिखिए और भक्ति के सिद्धांत की स्थापना करने के लिए सारे शास्त्रों का मर्म निचोड़ लेके आप ग्रंथों की रचना कीजिए। और जो ब्रज में श्री कृष्ण की लीला स्थलियां हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, उनको पुनः प्रकट कर दो। तो षड गोस्वामी जब यहां ब्रज में आए तो वो इन 4 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपना सारा समय बिताते रहे। बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी आए, वो पूरे 8 साल श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहे थे, उनके सानिध्य में। चैतन्य महाप्रभु के तिरुभाव के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा था कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं गोवर्धन पर्वत के ऊपर से छलांग मार के अपने प्राण को त्याग दूंगा, आत्महत्या कर दूंगा, क्योंकि उस विरह को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी आए ब्रज में, रूप और सनातन गोस्वामी ने उन्हें अपने निकट लिया और कहा कि ऐसे नहीं सोचना, तुम हमारे साथ में ही रहना, तुम हमारे भाई बनकर रहना, हम साथ में मिलके यहां भजन करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि देखो महाप्रभु ने आपको भेंट दी है एक गोवर्धन शिला की और आदेश भी दिया है कि कैसे गोवर्धन शिला की उपासना करनी चाहिए, साथ साथ श्रीमती राधा रानी की प्रिय गुंज की एक माला दी है आपको। इसका अर्थ ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि आप गोवर्धन के पास रहोगे। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी वहां रहे राधा कुंड के तट पे। एक दिन जब वहां बैठे थे तो उन्होंने सोचा कि ये कुंड की अवस्था अच्छी नहीं है, काश मैं अच्छी तरह से कोई घाट बना लेता ताकि भक्त लोग आसानी से कुंड में प्रवेश कर पाते। और फिर आगे सोचने लगे कि हाँ, इसके लिए फिर पैसा तो बहुत लगेगा, धन लगेगा, कितना धन लगेगा देख लें। तो ऐसे विचार मन में आए तो फिर वो अपने आप को कोसने लगे, अरे रे रे, मैं ये सब मैनेजमेंट की बातें सोच रहा हूं, ये सब क्या है, मेरा भजन नष्ट हो जाएगा। तो फिर उन्होंने अपने इन विचारों को अपने मन से हटा दिया। फिर उधर भगवान के चमत्कार देखिए, बहुत दूर 1000 मील दूर समर्पण नाम के एक व्यापारी थे जो बद्रिक आश्रम की ओर जा रहे थे। तो बहुत धन लेकर दान देने के लिए जा रहे थे बद्र विशाल जी को। तो जब एक दिन वो रात को सोए थे तो बद्र विशाल जी उनके सपने में आए और उन्हें कहा कि हे समर्पण, ये धन मुझे अर्पण नहीं करना, तुम ब्रज में जाना, वहां राधा कुंड है, उसी राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी नाम के एक साधु हैं, उनको ये दान कर देना। तो समर्पण नींद से उठे, बड़े प्रेमावेश में थे कि स्वयं बद्र विशाल मेरे सपने में आए और मुझे आदेश दिया। तो तुरंत निकल पड़े, राधा कुंड पहुंचे, रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आए और दिया पैसा। उन्होंने, मैं पैसे से कुछ लेन देन नहीं करता, मैं नहीं लूंगा, विरक्ति की चरम सीमा का प्रदर्शन कराया रघुनाथ दास गोस्वामी। ऐसा वैराग्य कोई नहीं कर सकता, ना किसी को नकल करने का प्रयास करना चाहिए, वो आदमी मर ही जाएगा दो थोड़े दिनों में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पैसे से वो छूते भी नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने सारी बात सुनी कि अरे, ऐसे स्वयं भगवान की इच्छा है, उनके सपने में प्रकट होके ऐसा कह रहे हैं, तो फिर उन्होंने बात मान ली। फिर उन्होंने जीव गोस्वामी को बुलवाया वृंदावन से। तो जीव गोस्वामी से कहा कि देखो, ऐसे ऐसे हुआ है। तो जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी मिलके फिर सारी व्यवस्था की, फिर खुदाई अच्छी तरह से और की, फिर घाट बनने लगे। जीव गोस्वामी मैनेजमेंट में बड़े बड़े सक्षम थे, व्यवस्थापन में, तो उन्होंने सारी व्यवस्था कर ली और उन्होंने पैसे भी दे दिए जीव गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी ने, कि जमीन खरीद लो। तो जीव गोस्वामी ने सारे जो कानूनी कार्यवाही होते हैं वो सब कर लिए, वकीलों के पास जाने, उसमें वकील तो नहीं हुआ करते थे, जो भी था वहां राजा के जितने भी अधिकारी व्यक्ति थे उनके पास जाके सारे कागजात ठीक ठाक कर लेना। और रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के सबसे पहले महंत बन गए। और इस तरह से जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के कृपा से आज हमें राधा कुंड उपलब्ध है दर्शन करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए। फिर आगे चल के रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखित रूप में नियुक्त किया जीव गोस्वामी को कि आप अगले महंत बनोगे। और फिर उनके बाद एक उनके शिष्य जीव गोस्वामी के शिष्य, फिर वो महंत बने और ऐसे वो परंपरा चलती आई। तो इस तरह से राधा कुंड यहां प्रकट है। वैसे कहने के लिए तो और बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत कुछ नहीं है, इसलिए हम एक अभी भजन गाएंगे। तो एक 10 मिनट लगेंगे, कृपया थोड़ी देर हो गई है, फिर भी क्योंकि आज बहुत विशेष दिन है, हम इस भजन को गाएंगे। श्री राधा कुंडाष्टकम, रघुनाथ दास गोस्वामी विरचित। तो तदति सुरभि राधा कुंडम एवाश्रयो में, हर पंक्ति का अंतिम लाइन ये है कि ये बहुत सुंदर और रमणीय राधा कुंड मेरा एकमात्र आश्रय हो, ये प्रार्थना रघुनाथ दास गोस्वामी की है। तदति सुरभि राधा कुंडमेवाश्रयो मे, वृषभ तनुज नाशा नर्म धर्मोक्तिरंगै, नर्म निखिल निज सखिर्भिर्यत् स्वहस्तेन पूर्णम्। प्रकटितमपि वृन्दारण्यराज्ञा प्रमोदेः तदतिसुरभिराधाकुण्डमेवाश्रयो मे। व्रज भुवि मुरशत्रुः प्रेयसीनां निकामैः सुलभमपि तूर्णं प्रेमकल्पद्रुमं तम्। जनयति हृदि भूमौ स्नातुरुच्चैः प्रियं यत् तदति सुरभिराधाकुण्डमेवाश्रयो मे। अघरिपुरपि यत्नादत्र देव्यः प्रसाद प्रसरकृतकटाक्षप्राप्तिकामः प्रकामम्। अनुसरति यदुच्चैः स्नानसेवानुबन्धैः तदति सुरभिराधाकुण्डमेवाश्रयो मे। व्रज भुवन सुधांशु प्रेम भूमिर्निकामम्। व्रज मधुर किशोरी मौलिरत्न प्रियेव परिचितमपि नाम्ना यच्च तेनैव तस्याः तदति सुरभिराधाकुण्डमेवाश्रयो मे। अपि जन इह कश्चिद् यस्य सेवा प्रसादैः प्रणय सुरलता स्यात्तस्य गोष्ठेन्द्रसूनोः। सपद किल मदीशा दास्य पुष्प प्रशस्य तदति सुरभिराधाकुण्डमेवाश्रयो मे। तटमधुर निकुञ्जा क्लिप्त नामान उच्चैः निरपरिजनवर्गैः संविभज्याश्रितास्तैः मधुकर ऋतरम्या यस्य राजन्ति काम्या तदति सुरभिराधाकुण्डमेवाश्रयो मे। तटभुविवरवेद्यां यस्य नर्माहिति हृद्याम् मधुर मधुर वार्तां गोष्ठचन्द्रस्य भङ्ग्याम् प्रथयति मिथ ईशा प्राणसख्यालिभिः सा तदति सुरभिराधाकुण्डमेवाश्रयो मे। अनुदिनं तिरङ्गैः प्रेममत्तालिसङ्घैः वरसरसि जगन्धैर्हारिवारि प्रपूर्णेः विहरत इह यस्मिन् दम्पतीतौ प्रमत्तौ तदति सुरभिराधाकुण्डमेवाश्रयो मे। अविकलमति देव्याश्चारु कुण्डाष्टकम् यः परिपठति तदीयोल्लासि दास्यार्पितात्मा अचिरमिह शरीरे दर्शयत्येव तस्मै मधिरुपुरति मौदेः श्लिष्यमाणां प्रियां ताम् तदति सुरभि राधा कुण्डमेवाश्रयो मे तदति सुरभि राधा कुण्डमेवाश्रयो मे राधा कुण्डमेवाश्रयो मे राधा कुण्डमेवाश्रयो मे जय राधा कुण्ड 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 जय राधा कुण्ड जय जय राधा कुण्ड जय राधा कुण्ड जय जय राधा कुण्ड हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा कुंड की जय श्री राधा कुंडाष्टमी की जय श्री राधा कुंडाष्टकम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरे कृष्ण।